اخلاق اچھے ہو، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی دامت قاسم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. خلیفہ امیر سنت ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی کے اندر عافیت، راحت اور سکون عطا فرمائے. سیدی، کسی شخص نے ایک بات کہی اور وہ بات نے مجھے اپروچ کیا، میں چاہ رہا ہوں آپ اس پر اپنی رائے اور آپ کی فیلنگز کیا ہیں اس حوالے سے، آپ کا تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے فرمائیں. میں کہا کہ آپ دیکھیے کہ زمانے کے اندر لوگ خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں، یعنی لوگ پریشان ہیں کس کے لیے؟ خوش رہنے کے لیے. اور اس پر کسی کہنے والے نے کہا کہ دیکھیے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے فتوح الغیب شریف کے اندر کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کے سپرد کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور فیصلے پر راضی ہو جائے، تو یہ پریشانی سے بچ کر انشاءاللہ یہ راحت اور عافیت کے سائے اور دائرے کے اندر آئے گا. کیا فرماتے ہیں
آپ؟ نے جو یہ جملے کہے نا دونوں، یہ دونوں میں تو مطابقت نہیں لگ رہی. سیدی مرشدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فرمان ہے اسے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اگر بندے میں کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے.
راضی ہو جی.
کہ وہ ہے نا کہ رضا مولا از ہما اولا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اسی طرح وہ مال بڑھانے کی کوشش کرے، اسے مال نہیں بڑھ رہا، وہ زیادہ کمانے کی کوشش کرے مگر کما نہیں پا رہا.
صحیح.
اچھا وہ تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ اس طرح کی دوائیاں لیتا ہے مگر جو ہے وہ اسے افاقہ نہیں ہو رہا. اب یہ جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، کیونکہ اگر کوئی مطلقاً اگر کوئی غوث اعظم کے فرمان کو لیتا ہے اور نکلا نکھٹو، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بس میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں کچھ نہیں کماؤں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، تو اب تو ظاہر ہے کہ غوث اعظم ہی فرمائیں گے اسے. کہ چونکہ غوث اعظم کے رب نے جب فرمایا ہے، غوث اعظم کے آقا نے جب فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمیں تدبیر کا حکم ہے
جی،
کہ تدبیر ہم نے کرنی ہے. اب اگر ہم نے تدبیر کی، اچھی تدبیر کی، اور اب اگر اس تدبیر کے مطابق ہمیں حاصل نہ ہوا،
صحیح،
اب ہم بری ذمہ ہو گئے، اب رضا مولا از ہما اولا ہے نا. جیسے توکل کے بارے میں تھا نا، جیسے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے
جی،
کہ توکل کے بارے میں حدیث پاک میں
جی
کہ اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو پھر اللہ پر چھوڑو.
واہ واہ.
اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ بندہ اگر اونٹ کو اس طرح چھوڑ دے تو بالکل اونٹ وہیں رہے گا. البتہ ایسے اہل اللہ گزرے ہیں، ایسے متوکلین گزرے ہیں کہ جن کی یہ کیفیت تھی، تو ہم عوام کے لیے یہی ہے کہ ہم اونٹ کو رسی سے باندھیں اور اللہ پر توکل کریں. اچھا اب رہا ان کا یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ زندگی میں خوش رہنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو یہ جملہ تو واقعی جو نا بڑا جامع ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی زندگی اچھی گزاریں
جی،
مگر اس کے لیے اتنا پریشان رہتے ہیں کہ اتنا ہم جو ہے نا وہ پریشان رہتے ہیں کہ جس پیٹ کے لیے ہم کماتے ہیں، بعض کے آپ کو ملے گی ایسی کیفیت، جس پیٹ کے لیے کماتے ہیں کہ چند لقمے سے یہ پیٹ بھر جائے گا، تو خیر وہ تو اچھا خاصا کھانا کھا بھی سکتے ہیں، تو جس پیٹ کے لیے کما رہے ہیں تو ان کے پاس کھانے کا وقت نہیں ہے.
اللہ اکبر.
ایسے بھی آپ کو ملیں گے. اچھا جن بچوں کے لیے کما رہے ہیں ان بچوں کو ان کے پاس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں، بٹ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ بچے پھر باپ کو باپ کی مانتے نہیں ہیں، ان کو ذرا ان کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے اور کچھ ایسی خامیاں رہ جاتی ہیں. دیکھیں ماں اور باپ
جی،
یہ ظاہر ہے کہ ایک بیلنس ہے، کہ جو چیزیں ماں نے سکھانی وہ باپ نہیں سکھا سکتا، جو چیزیں باپ نے سکھانی وہ ماں نہیں سکھا سکتی. تو اب کیا ہے کہ ان بچوں میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں اور پھر وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. अब यही बाप फिर सोचता है कि काश कि मेरे बचपन में वक्त दिया होता इन बच्चों को, इनके बचपन में। तो क्या है, जिनके लिए कमा रहा है उनको देने के लिए वक्त नहीं है, जिस पेट के लिए कमा रहा है तो उस में जो ना वो चंद लुकमे डालने के लिए तो वक्त नहीं है, बस जिस हद से खाएगा और भागने की करेगा। अगर वक्त है भी तो क्या बिल्कुल जो ना वो इतनी स्पीड से खाएगा कि बस वो जल्दी मुझे कमाना है, बस वो घाक ना निकल जाए, बस वो मुझे फना सौदा करना है, ये मामला करना है। तो ये जो जुमला है ना कि जिंदगी में खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, तो ये उनके लिए है, वरना ये कि बंदा नॉर्मल कमाए, अल्लाह की रजा पे राजी रहे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। कहे
जी
ना कि इब्ने आदम को अगर एक सोने की वादी दे दी जाए तब भी वो तमन्ना करेगा कि काश में वह दो सोने की वादियां होती। तो यही है कि इसका पेट तो कब्र की मट्टी ही भरेगी। तो अल्लाह हमें अपनी रजा नसीब फरमाए,
आमीन आमीन
अल्लाह
आमीन
हमें अपने सिवा किसी और का मोहताज ना बनाए।
आमीन
खैर, हम ये दुआ तो करते हैं, करते रहना चाहिए कि जरा के बुजुर्गों ने बुजुर्गों के जबान से, यानी बंदा ये तो जहन बना ले कुछ भी हो अल्लाह ताला का मोहताज है, अल्लाह का मोहताज है, बस ये जहन में रखे, अल्लाह ही देने वाला है सब कुछ। तो इसमें यही इस दुआ से मुराद यही कि अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए, बस यही कि अल्लाह ताला हमें अपने हाल पर ना छोड़े, हमारे हाल पर ना छोड़े, बस हमें अपना ही मोहताज रखे,
माजूरी
हमें
आसाना हो के जी
बिल्कुल हाँ हमें जो ना माजूर ना करे, हमें मफलूज ना करे, कोई ऐसे मामला ना हो जाए कि अगर ऐसे हालात ना पैदा हो जाए कि हम जो ना घर से बाहर ही ना निकल सकें कमाने के लिए। कि भाग देखो तो मार्केट में ऐसी आजमाइश हो जाती है, बंदे से ऐसी गलती हो जाती है कि उसे लोग कहते हैं भाई मार्केट नहीं आना।
सही
तो अल्लाह हमें ऐसे हालात से बचाए,
आमीन
जवाल नेमत से ही बचाए,
आमीन
और किसी का मोहताज ना करें,
आमीन आमीन अल्लाह रहमत फरमाए
अपना ही मोहताज रखे,
आमीन
और
आमीन
यही हमारा अकीदा भी रखे,
मरहबा
इसी में हमारा खात्मा भी फरमाए।
आमीन मरहबा माशाल्लाह। परेशानियों को जितना जितने नंबर है उतने ही दिए जाएं, उससे ज्यादा उसको ग्रेड ना दिया जाए,
बिल्कुल, जितना
वरना
उसको
फिर वो
सर पे
आपको डिक्लेयर
चढ़ाएंगे
करते
तो
रहेगा।
फिर जो ना वो फिर क्योंकि सर पे देखेंगे बंदे के एक, जो है वो एक बंदा 10 किलो उठा सकता है, एक बंदा 20 किलो उठा सकता है, वो 30 किलो का बोझ डाल देंगे तो आखिर दब जाएगा।
सही
तो इसी तरह हर बंदे की कैपेसिटी होती है कि मुसीबत बर्दाश्त करने की, परेशानी बर्दाश्त करने की, बातें बर्दाश्त करने की। अच्छा, अब क्या कि किसी ने परेशानी उसके बयान किया, कोई मामला आया कि उसको नुकसान हुआ और निकल गया, अब अगर यही शख्स इस नुकसान को अपने सर पे सवार कर लेगा ना, तो अब यही नुकसान इसको टेंशन में मुबतला करेगा, फिर यही शख्स बिस्तर पे आ जाएगा, उसको सवार ना करे। कोई नुकसान हो गया माली तौर पे नुकसान, कोई मसला हो गया, इसने तदबीर अच्छी की थी, कोई बात नहीं, रिजाए मौला सा मौला,
सुभान
जो
अल्लाह
अल्लाह ताला की मर्जी। हो सकता है कि ये अगर इसे नुकसान ना होता माली तौर पे, तो हो सकता है इसकी जान पे कोई नुकसान हो जाता, इसकी औलाद पे कोई नुकसान हो जाता, इसके घर में कोई ऐसा नुकसान हो जाता, इसकी घरवाली को कोई ऐसा नुकसान हो जाता, यही है कि इसके आमाल में कोई नुकसान हो जाता। तो इसके लिए बेहतर यही कि उस नुकसान पर राजी रहे, पता रजाए मौला समा मौला।
सुभान अल्लाह मरहबा। कॉल शामिल करते हैं।
मेरा सवाल है, अगर किसी मुसलमान में कोई ऐब या बुराई दिखे तो क्या करना चाहिए?
अगर खुदा ना खासा ऐसा मामला हो कि किसी मुसलमान के अंदर हमें ऐब नजर आए या बुराई नजर आए, तो इस शख्स का पर्दा रखना चाहिए, इस शख्स को जलील नहीं करना चाहिए, इसको रुस्वा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए कि आज इसने ये बुराई की तो ऐसा ना हो कि कल मैं भी इस बुराई में मुबतला हो जाऊं। तो बंदे को चाहिए उसे डरता रहे। और दूसरा ये कि उस सामने वाले बंदे की, के जिसके अंदर ये बुराई देखी, उसकी इसलाह की कोशिश करे। कि हदीस पाक में है ना कि तुम में से हर एक अपने भाई का आईना है, मिरर है, ठीक है, फइन रआ बिही अज़न, तो अगर उसमें तुम कोई बुराई देखे, तुम में से उसमें कोई बुराई देखे, फल युमित हो अन हो, तो उससे दफा कर दे।
बुराई दूर कर दे।
हाँ, अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि जैसे आईना चेहरे के सारे ऐब और खूबियां बताते हैं ना कि आपको कहाँ जख्म है या कहाँ कोई मसला है, या बाल सीधे ही नहीं है, या दाढ़ी के बाल किस तरह है,
सही
मूछें आपकी कहाँ जा रही है, ये सर के बाल कहाँ जा रहे हैं, तो फरमाते हैं कि जिस तरह आईना सारे ऐब और खूबियां जाहिर कर देता है, ایسے ہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر اسے مطلع کرتا رہے، اسے اطلاع کرتا رہے، اسے بتاتا رہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے. مزید فرماتے ہیں کہ رسوائی کرنا ممنوع ہے، اصلاح کرنا ثواب. رسوائی کی ممانعت ہے اور اصلاح کا حکم ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے داب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم اس پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب پر مطلع کرے. اب یہاں میں جو نا وہ یہ بھی دیکھنا چاہیے، دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مجتہد تھے اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے ڈائریکٹ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل کی. اب یہ دیکھ لیں کہ ان کے اندر کیا عیب ہوگا، مگر ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے
جی.
یہ ہمیں سکھانے کے لیے. تو اب اگر ہمیں اگر کوئی ہمارے عیب دکھائے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں کہ وہ ہمارا محسن ہے. اگر وہ عیب ہمیں نہ بتاتا اور وہی عیب کل کو ہمیں نقصان پہنچا دیتا یا وہی برائی کل کو ہمیں قبر میں پھنسا دے دی تو آپ کہاں کھڑے ہوتے،
آپ کو
ہمارے ساتھ کیا ہوتا
جی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، عیب بتانے والے اچھے لگتے ہیں لوگوں؟
نہیں نہیں بالکل، عیب بتانے والے بالکل اچھے لگنے چاہیے. بھائی وہ عیب بتائے گا تو ہماری اصلاح ہوگی نا. جیسے مقولہ ہے نا، محاورہ ہے، مقولہ ہے کہ دشمن کی باتوں سے سیکھو، کیونکہ دشمن کی جو تنقید ہے نا، دشمن کی تنقید سے سیکھو. تو دشمن جو ہے نا وہ کوئی لحاظ کوئی مروت نہیں کرے گا، اس کو جو نظر آئے گا وہ آپ پر جو ہے اچھال دے گا. اب اس نے تنقید کی، اب آپ اس سے جو ہے اپنی اصلاح کریں. علماء نے تو دشمن کے بارے میں فرمایا ہے تو جو دوست جو اچھے طریقے سے ہمارے اصلاح کرے، ہمارا عیب بتائے تو اس کے تو کیا کچھ، اس کو تو ثواب بھی ملے گا. البتہ دشمن کو ظاہر ہے کہ دشمن اگر عیب جوئی کے لیے بتا رہے، لوگوں میں اس کو بدنام کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ سب کو تنقیدیں کر رہا ہے، تو ظاہر وہ گناہ گار ہے. کہ اگر اس کے اندر یہ عیب ہے، اگر اس کی اصلاح کی نیت ہوتی تو یہ اس کے پاس ڈائریکٹ جاتا اور اسے کہتا کہ آپ یار یہ اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے اپنی دشمنی اپنی جگہ، پھر یہ ذرا آپ کا یہ ذرا دیکھ لیں یہ درست نہیں ہے اور یوں یوں آپ دیکھ لیں. اب یہ چونکہ یہ تنقید اس لیے کر رہا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ یہ شخص ڈیگریڈ ہو. اب اس کا یہ عیب اگر یہ جس کا گناہ ہے یہ عیب ہے، یہ علانیہ نہیں ہے خفیہ ہے، تو اب یہ غیبت میں آئے گا کہ اگر یہ گناہ کر رہا ہے کوئی بھی، اگر یہ علانیہ نہیں ہے تو غیبت میں آئے گا، اور علانیہ نہیں جان بوجھ کے بیچ چوک پہ کر رہا ہے تو یہ پھر غیبت میں نہیں آئے گا، اور تب بھی اسے اس کی اصلاح نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے سب لوگ ہاں
اصلاح کا یہ طریقہ نہیں. البتہ بعض اوقات کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا دشمن اگر بھلے وہ بیچ چوک پہ برائی کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے، دشمن اگر اس طرح کا اسے دھاڑ دینا تو بعض اوقات اس کی اصلاح کا بھی سبب بن جاتا ہے.
بن جاتا ہے ٹھیک ہے سب. دنیا میں لوگ ہاں میں ہاں ملانے والوں کو یہ اچھا سمجھتے ہیں. آپ جیسے چاپلوس آپ دیکھیں کہ مختلف کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹیچ ایک قسم کا طبقہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جو ان کی ہاں میں ہاں واہ واہ کیا بات کہی. آپ پرانے زمانے کی یعنی ہسٹری کی آپ بادشاہوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، اور ہم نے بھی چیزیں جو ہیں وہ ہسٹری کی جو اسٹڈی کی ہیں اور جو ایک ہے اس میں یہ ہے کہ جو بادشاہوں کی واہ واہ کر رہا ہے، آجی واہ جی کمال کر دیا ہے، کیا کیا بات کہی ہے، کیا گفتگو فرمائی ہے، کیا فیصلہ کیا ہے، کیا انصاف کیا ہے، کیا بادشاہت فرمائی ہے، کیا خوبصورت اقدام کیا ہے، کیا زبردست بات کی ہے آپ نے، اللہ اکبر. یعنی جو اہل اختیار و اقتدار طبقہ ہوتا ہے وہ، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جو لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، انفلوئنسر ہوتے ہیں، ان کو بھی ہاں میں ہاں ملانے والا طبقہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اپروچ کرتا ہے، دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے. بھائی چاپلوسی بھی کر رہا ہے، ہاں میں ہاں بھی ملا رہا ہے، ہاں یار ٹھیک ہے اپنا آدمی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟
اب دیکھیں جو بادشاہ اسلام تھے ان کی تو بات ہی نرالی تھی، وہ تو واقعی کہ اس چیز کے جو وہ حق رکھتے تھے. میں نحو میں ہے نا کہ نحو کو سمجھنے کے لیے بادشاہ جیسا دل ہونا چاہیے. تو اگر آپ ہاں ہاں اب آپ اپنی واہ واہ چاہتے ہیں تو پھر واقعی بادشاہ بنے. کہ وہ اہل اسلام کے جو بادشاہ جو فیصلہ کرتے تھے ان کی باتیں نرالی تھی، کیا کیسے فیصلے کرتے تھے. خیر جو ایسے بادشاہ جو اپنی واہ واہ چاہتے تھے اور غلط فیصلے کرتے تھے تو ان بادشاہوں کا انجام بھی دیکھ لیں،
برا ہی ہوگا. یہ تو بات ٹھیک ہے آپ،
تو برا ہی ہوا ہے
ایسا ہی.
ٹھیک ہے تو اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہے ایسا جسے تو کوئی چاپلوس لگا ہوا ہے تو واقعی یہ تو اس کے لیے خطرناک ہے. گڑے میں بھی گر رہا ہوگا نا تو
واہ 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 واہ
वाह भाई, आप किस
क्या
शान से हम गिने, क्या
आपने,
छलांग लगाई। नहीं नहीं छलांग नहीं, आप किस शान से गिने।
अल्लाह
अगर आपके जो कोई और होता तो ऐसा गिरता कि बस।
लकी
तो ये जो था ना चापलूस बाज, ये चापलूस ये बंदे को मरवा देते हैं। तो चापलूसी से ही बचना चाहिए और चापलूसों से भी बचना चाहिए, दोनों से बचना है।
मरहबा, बड़ी प्यारी बात।
और चापलूसी वाले को भी चाहिए कि वो अपने आप को हक बात करने का आदि बने। उससे चाहिए अल्लाह ताला के आदब में से है ना कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने जो लिखा है अल अदब फिद दीन, के बंदे को चाहिए कि लोगों के पास जो भी माल है ना उसे मायूस हो जाए,
अल्लाह
बस ये अपने रब तबारक व तआला से लो लगा के रखे,
वाह
बस इसी से ये रखे। जिसने जिस रब ने उसको दिया वो तुझे भी दे सकता है।
क्या बात, वाह वाह वाह।
तो जब बंदा ये सोच बना लेगा ना तो अब ये वाह वाह करने में ये सब कुछ ना वो इसकी खत्म हो जाएगी।
और ये
चापलूसी से जी,
इस तमल्लुक को, चापलूसी को बातनी बीमारियों में से बीमारी
बिल्कुल
कर दिया
बिल्कुल
गया। अल्लाह हमें इससे बचाए,
आमीन। बातनी बीमारियों की मालूमात के लिए, बातनी बीमारियों की मालूमात, तो ये किताब बहुत जबरदस्त है, इसका मुताला करना चाहिए। इसमें बातनी बीमारी की डेफिनेशन भी है, उसकी तारीफ भी है, डेफिनेशन भी है, और फिर ये कि उसका इलाज भी है, दोनों चीजें हैं। मैंने सिर्फ मर्ज नहीं बताया, मर्ज का इलाज भी बताया।
ऐसी बात है, अल्लाह हमें बचाए।
आमीन।
और खलीफा मेरे सुन्नत की इस गुफ्तगू से जो एक बात सीखने को मिली वो ये भी है कि जो हर बात में हाँ मिलाने वाले और चापलूस अफराद हैं, इनसे इज्तनाब किया जाए, वरना ये बहुत गहरा नुकसान देंगे, और जिसको नुकसान होना है उसी को होना है, इन्होंने बाद बाद में गायब भी हो जाना है। मैंने ऐसा कुछ दिन पहले जो है वो कुछ लोग देखे कि एक ही जंजीर के अंदर चार लोग बंधे हुए हैं। अब ये क्या है, ये किसी जुर्म के अंदर शरीक अफराद है, और इसमें यह है कि जब एक को खींचा जाएगा तो दूसरे साथ वो खुद, उसने नहीं भी अगर आना ना, या थोड़ा पीछे रह गया या उठने में उसको हो गया, तो वो उसको एक लगना है, झटका एक लगना है उसको, अल्लाह बचाए। और ये वो ही होते हैं कि जो है वो चार ने मिलकर को काम किया, तीन दो फरार हो गए, एक फरार हो गया, दो गिरफ्तार हो गए, या पांच ने मिलकर को गलत काम किया तो बाद का तो वो चल रहे होते ना, हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं साथ में, अब ठीक है करेंगे, कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा, ये देख लेंगे क्या होगा, और एंड में फिर क्या होता है, वो जो सामने आ जाता है वो धर लिया जाता है, और ये फिर पीछे से गायब हो जाते हैं। तो अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचाए, और हमें आफियत अता फरमाए। दाऊद सलामी के दीनी माहौल से बसता रहेंगे, अच्छे माहौल से बसता रहेंगे, अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे, तो इंशाल्लाह अल करीम जो हमें अल्लाह रसूल की याद दिलाएं, गुनाहों से हमारी तवज्जो हटाएं, अल्लाह रसूल की याद की तरफ लगाएंगे, तो इंशाल्लाह इसका हम फैज पाएंगे इंशाल्लाह। मजीद कॉल शामिल करते हैं।
ये बताइएगा कि हौसला अफजाई और जो है ना चापलूसी, इनमें फर्क जो है वो क्या है?
देखिए, हौसला अफजाई और चापलूसी में जो ना बहुत फर्क है। चापलूसी ये कि बंदा जो ना उसके हर गलत काम में, हर चीज में जो ना वो उसकी उसकी तारीफें ही करता रहेगा, सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलेगा, उसे तारीफों पे तारीफ है, तारीफों के तारीफ को पुल बांधेगा। जबकि हौसला अफजाई अलग चीज है, और हौसला भी तो चूंकि बच्चों की भी की जाती है, जबकि चापलूसी बच्चों की नहीं की जाती। तो इसे तो बंदा अंदाजा लगा लगे चापलूसी हौसला अफजाई कितना जो ना वो फर्क है। अल्लाह करीम हमें चापलूसी से बचाए और हौसला अफजाई करने वाला बनाए।
आमीन।
ये सवाल आपका बहुत प्यारा है कि वाकई के हौसला अफजाई जो है ना ये एक ऐसी चीज है कि बंदे की तरक्की में जो किरदार होता है ना, ये हौसला अफजाई का भी होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तरक्की करे, आपका जो शागिर्द है वो तरक्की करे, तालिबुल इल्म तरक्की करे, तो आप जितनी उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम जो है वो तरक्की करेगा। और दूसरा ये कि हौसला अफजाई जो अपने हम मनसब की और अपने से नीचे वाले की जाती है उमूमी तौर पे, जबकि जो चापलूसी जो है वो अपने से ऊपर वाले की जाती है। और चापलूसी में जो बंदे का एक मकसद होता है, कुछ हासिल करना है, जबकि हौसला अफजाई में बजाहिर ये कुछ नहीं होता।
चापलूसी की तारीफ का जो एक एसेंस, मजमून और खुलासा है, वो खलीफा मीर सुन्नत ने बड़े आसान पेराए के अंदर अपनी गुफ्तगू में बयान कर दिया है, और इसको बखूबी समझा जा सकता है। अल्लाह ताला हमें आफियत और सलामती अता फरमाए।
आमीन।
कॉल शामिल करेंगे।
बिल्कुल
जी।
बुरा सलूक करने वालों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए?
सवाल तो बड़ा अच्छा है कि चूंकि एक मुआशरा इसमें बुरा सलूक भी होता है एक दूसरे के साथ, अगर कोई खुदा ना खासा ऐसा सलूक करे तो बंदे को चाहिए कि वो बुराई का जवाब बुराई से ना दे, अच्छाई से दे। क्योंकि हम जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं, उनकी शान देख लें, उनके साथ लोगों ने क्या क्या नहीं किया, पर इसके बावजूद इनका सलूक देखें। है ना, किसी ने कलाम लिखा है ना, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने बेशुमारों को मुआफी दी। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान देखेंगे, इनके साथ लोगों ने क्या क्या सलूक किया इसके बावजूद, और बास तो ऐसे वाकयात भी हैं। अच्छा, पर क्या हुआ कि हमारे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न सलूक की बरकत से वो ईमान भी ले, जिनके नसीब ईमान था। अच्छा, जो ईमान नहीं भी लाए तो वैसा कायल हो जैसे गौरस के बारे में आता है कि उसने जो है वो एक बार खातम नबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महवे आराम थे, आराम फरमा रहे थे, तो गौरस ने जो है वो फुर्ती से आबड़े सलाम की तलवार निकाल ली। अब उसने जो सरकारी सलाम को कहा कि ए मोहम्मद, अब आपको कौन बचाएगा? आप नबी थे, रसूल थे। आबड़े सलाम ने फरमाया, अल्लाह,
अल्लाह
मुझे मेरा रब बचाएगा। बस ये कहना था कि उसके से तलवार छूट गई,
अल्लाह
घबरा गया। आबड़े सलाम ने तलवार उठाई और फरमाया, गौरत, अब तुझे कौन बचाएगा? तो उसने कहा कि आप ही मेरी जान बख्शेंगे। खैर, आबड़े सलाम ने उसे माफ फरमाया। अब ये गौरत गया अपनी कौम में, उसने कहा कि मैं उस शख्स से मिलकर आया हूं कि जो वाकई के जिसका कोई सानी नहीं है अखलाक के हवाले से, अपनी कौम में कहने लगा। तो ये तो जरा एक वाक्य, और भी वाक्यात हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इदफा बिल्लती हिया अहसन, ए सुनने वाले, बुराई को भलाई से टाल। फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, जबी वो के तुझ में और उसमें दुश्मनी थी, कअन्नहु वलीयुन हमीम, ऐसा हो जाएगा जैसा कि गहरा दोस्त। खातम नबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए उकबा बिन आमिर, जो तुमसे नाता तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो। तो देखिए कि हमारा प्यारा प्यारा दीन हमें क्या सिखा रहा है। तो हम जो है ना, अल्लाह रसूल के अहकाम पर अमल करते हुए हम अफ़ो दर गुजर से काम लें और अपनी गाड़ी चलाएं ज़िंदगी की, इंशाल्लाह उल करीम। अगर कल तक अगर ये सख्त दुश्मन था तो इंशाल्लाह उल करीम ये गहरा दोस्त हो जाएगा, उसने अखलाक की बरकत से, उसने सलूक की बरकत से।
मुश्किल काम है सब, बल्कि बहुत मुश्किल है। अब आप देखें, जिस बंदे ने मुझे ताने दिए हुए हैं और जिसने मुझे सताया हुआ है, जिसने मेरा जीना हराम किया हुआ है, अब मैं उसके लिए इतना फराख दिली के साथ जो है वो पेश आऊं, ये बहुत मुश्किल काम है।
सुनो, यही तो मसला है, यही तो जहर है कि वो कहते हैं ना, नफ्स को मारो, को नफ्स को बाकड़ बिल्ला तोड़ी, कोई बिल्ली तोड़ी गई, कोई बिल्ला तोड़ी, कोई कुत्ता तोड़ी, कोई सुई मार दें इसको बिल्कुल। यही तो नफ्स है, ख्वाहिशात, सोच, यही तो नफ्स है। अभी देखे ना कि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं ना, बदीरा बदी सहल बाशत जजा, यानी बदी का बदला यानी बुराई का बदला बुराई से देना तो आसान है, अगर मर्दी अहसिन इला मन असा,
वाह 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 वाह,
अगर तुम मर्द है ना तो बुराई का बदला जो है ना वो अच्छाई से दे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी, यानी इंसान तू मिलाने के लिए आया है, जुदाई डालने के लिए नहीं आया। तो लिहाजा बंदे को चाहिए मर्द बने, मर्द बने, और जो है वो बुराई का बदला अच्छाई से दे, तभी तो नतीजा निकलेगा ना। अब यही बंदा अगर बीज बोता है, कितनी मेहनत होती है, कितनी जो ना वो कोशिश करता है, वो धूप में रहता है, सब कुछ कहता है, फिर देखे ना फल निकलता है। तो ये अपने नफ्स को मारे, बुराई का बदला अच्छाई से दे, फिर देखे कैसा फल मिलेगा, कि यही दुश्मन इंशाअल्लाह करीम दोस्त हो जाएगा।
या मरहबा, माशाल्लाह, कॉल शामिल।
मेरो नाम उबेद रजा अत्तारी, आज जाने सीने अमीर अहले सुन्नत आई जो सफरे मदीना बाप के साथ पहली दफा खड़े थियो।
अल्लाह। सफ़र मदीना में जो पहली फेरी थी वो 1997 में, 1997 1997 में।
माशाल्लाह, यानी पहला सफर मदीना आपका कब हुआ? बच्चे ने सवाल
अमीर
किया।
सुन्नत के साथ।
अच्छा, अमीर सुन्नत के साथ चल मदीना। सुभान अल्लाह, मरहबा जी।
मेरा सवाल है कि अदिया मासूरा से क्या मुराद है? नीज़ ने पढ़ने के फवायद और बरकात भी बयान फरमा दीजिए।
अदिया मासूरा, अदिया मासूरा बड़ा मुश्किल है, इसको जो ना दुआए मासूरा कर लें। जो अदिया जो नहीं है, दुआओं की जमा है,
सही।
तो दुआए मासूरा, अदिया मासूरा जो ना, ये वो दुआएं हैं कि या तो है कि खातम नबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं मांगी हो, पढ़ी हो, या ये कि इनका इरशाद फरमाया हो, या ये कि इनसे जो है वो मनकुल हो। अब चाहे आबलम ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, या ये कि इनके पढ़ने का हुक्म दिया हो, या ये कि इनके पढ़ने के फजाइल बयान फरमाया हो, या ये कि इनके पढ़ने में सवाब हो, तो ये जो भी दुआएं ना, इन्हें जो है वो अदिया मासूरा कहा जाता है। जैसे इसका जो है ना वो, ये तो जमा है सिंगल ये के दुआए मासूरा। जैसे हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि खातम नबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर से निकले और ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह करीम के नाम से शुरू, मैंने अल्लाह करीम पर भरोसा किया, गुनाह से बचने और नेकी करने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से, तो उसे उस वक्त निदा दी जाती है कि ए बंदाए खुदा, तुझे सीधी राह की हिदायत दी गई, तुझे गमों से किफायत कर दिया गया, तेरी हिफाजत की गई और शयातीन को तुझसे दूर कर दिया गया। बस एक शैतान दूसरे से कहता है, ऐसे शख्स को कैसे गुमराह किया जा सकता है जिसे हिदायत दी गई, किफायत किया गया और महफूज कर दिया गया हो। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इनसे रिवायत है कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा हर दिन की सुबह और हर रात की शाम 3 बार ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, अल्लाह के नाम से शुरू के उसके नाम के साथ जमीन और आसमान में कोई भी चीज नुकसान नहीं देती और वह सुनने वाला और जानने वाला है, तो उसे कोई चीज नुकसान ना देगी। अब ये जो मैंने दो मिसालें दी ना, ये है दुआए मासूरा। इसे ना और भी हैं दुआए मासूरा, वो वाकई दुआए मासूरा में पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं दुआए मासूरा का मजमुआ, तो मदनी पंचसूरा जो है ये किताब है, अमीर सुन्नत ने इसको तसनीफ़ फरमाया है, अमीर सुन्नत ने लिखा है, तो मदनी पंचसूरा या मकतबतुल मदीना से हदीयतन हासिल कर सकते हैं, वरना ये कि दाऊद इस्लामी की जो वेबसाइट है www.daudislami.net, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF में।
बहुत बड़ा अल्लाह की रहमत से बुक्स का एक कलेक्शन है, लाइब्रेरी है दाऊद इस्लामी की वेबसाइट पर, तो इससे आप इक्तिसाब फैज भी कर सकते, इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये डाउनलोडिंग है, आपको किताब डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपको नीड है किसी चीज़ का, आप प्रिंट करना चाहें किसी पेज का, तो वो भी आप कर सकते हैं। माहनामा फिजान मदीना के मजामीन भी बड़े जामे, बड़े ज़बरदस्त और बड़े कम्प्रिहेंसिव अल्लाह की रहमत से मजामीन होते हैं, मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर, कुरान करीम के हवाले से, अहादीस मुबारका के हवाले से, सहाबे किराम की सीरत के हवाले से, बुजुर्गों की बायोग्राफी के हवाले से, और मुख्तलिफ उनवानात पर, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर अल्लाह की रहमत से बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा आसान और बड़ा खूबसूरत मवाद होता है, तो इसको भी आप हासिल कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसका मुताला अभी कर सकते हैं। कॉल शामिल करते हैं।
मेरा ये सवाल है कि क्या मर्द सोने की अंगूठी पहन सकता है?
जी नहीं, मर्द के लिए सोने की अंगूठी की इजाज़त नहीं है, गुनाह मर्द के लिए हराम है सोना पहनना,
ठीक है,
चाहे अंगूठी हो या चेन हो। अलबत्ता मर्द जो है वो 4.5 माशे से कम वजन की चांदी की अंगूठी पहन सकता है, उसमें भी एक पत्थर होना जरूरी है, वो भी एक वक्त में एक ही पहन सकता है।
नहीं, छल्ला भी नहीं पहन सकता,
छल्ला भी नहीं पहन सकता,
चांदी का छल्ला भी मर्द नहीं पहन सकता,
नहीं ना चांदी ना किसी और धातु का भी नहीं पहन सकता,
लोहे की अंगूठी भी नहीं पहन सकता,
लोहे की भी नहीं, ना लोहे की ना पीतल की, ना तो कॉपर पीतल की।
सही, ये बताएं छोटे बच्चे को बात कर होता है ना, बच्चा किसी के यहाँ, बेटी के यहाँ जो है वो, बेटी की विलादत हुई, बच्चे के यहाँ पोता हुआ, नवासा हुआ, उसको भी बाज़ अवक़ात लोग क्या करते हैं, उसको सोने की अंगूठी बच्चे को पहना देते हैं, इसकी आप पज़ीराई फरमाएंगे?
नहीं, अब देखें कि बच्चे बच्चा अगर पहनता है या किसी ने पहना है तो बच्चा तो गुनाहगार नहीं है
जी, वो तो है
मगर जिस
छोटा
वो तो,
के अंदर
हाँ वो तो ज़रे के मुकल्लफ ही नहीं है, मगर ये कि जो पहनाने वाला ना ये गुनाहगार होगा। जिस तरह मेहंदी लगाना बच्चे को लड़के को ये जायज़ नहीं कि लगाने वाला गुनाहगार होगा, तो इसी तरह जो है वो अंगूठी पहनाने वाला गुनाहगार होगा।
मोहब्बत का इजहार भी तो करना है ना कि अल्लाह
तो
ने,
मोहब्बत का इजहार अगर करना है तो उसका तरीका है कि आप सॉलिड सोना दे दें, उसे मिल्क में दे दें, रख दें उसके अकाउंट में, उसे खाते में डाल दें, दे दें नहीं बाकायदा बिस्किट वगैरह होता है जो भी होता है
सोने का बिस्किट
जो भी होता है वो दे दें,
सोने का
बिस्किट
सिक्का
या
भी दे जा
सिक्का
सकता।
भी होता है वो दे दें।
सही,
देना तो ज़ाहिर मकसूद है वो खुशी और उसके उसके माल में इजाफा हो, या अपने खुशी में जो देना तो ये कर दें।
मरहबा, माशाल्लाह जी, कॉल।
मेरा नाम मोहम्मद बिन वहीद है, मैं और से बात कर रहा हूँ, जान रशीद अमीर अहले सुन्नत। बच्चों को कितना खेलना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए?
जबरदस्त सवाल है जी। जी हुजूर,
बच्चों को खेलने के वक्त खेलना चाहिए और पढ़ने के वक्त पढ़ना चाहिए।
सुभानअल्लाह, मरहबा।
जो आपका एक वक्त मखसूस है खेलने के लिए उसमें खेलें, जी भर के खेलें, जो भी जायज़ गेम है वही खेलें, जो जायज से जो जायज़ खेलें वही खेलें, और जो पढ़ने के औकात हो उनमें आप पढ़ें, बैलेंस रखें, मैनेज करें, इंशाल्लाह वल करीम पढ़ाई भी अच्छी होगी और जो हमारे यहाँ जो बाज़ जो खेल खेले जाते हैं ना, तो इंशाल्लाह वल करीम इससे जो है वो सेहत वगैरह भी आपकी बच्चों की अच्छी होगी। वीडियो गेम्स के बजाय जो है ना मोबाइल में खेलने के बजाय फिजिकली चीज़ें खेलें, जैसे गेंद से खेलें, गाड़ियों से खेलें, फुटबॉल से खेलें, जो इस तरह की चीज़, या दो तीन बच्चे हैं तो वो भाग दौड़ वगैरह इस तरह के खेल करें खेलें। ये जो ना वे की जगह पढ़ने से वीडियो गेम खेलते हैं, ये इसका तो कोई बसर कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसे तो नुकसान आता है, ये बंदा यहीं पढ़ा रहेगा बच्चा जो है।
अल्लाह बचाए,
आमीन
जी। कॉल।
रात को अचानक आंख खुलने के बाद बहुत डर लगता है, इस सूरत में क्या किया जाए? जवाब इरशाद फरमा दें।
अल्लाह करीम रहम फरमाए, अल्लाह करीम महफूज रखे। इसमें यह कि अगर इस तरह हो जाए ना तो अब यह कि या रऊफ या रऊफ या रऊफ ये पढ़ते रहें,
ठीक है,
इंशाल्लाह करीम नींद आ जाएगी और सो भी जाएंगे, डर भी चला जाएगा।
सुभानअल्लाह, आप क्या ख्याल फरमाते हैं ये डर जहन में बिठाने में फैमिली का कितना असर होता है कि ये शुरू से ही बच्चे को जो है ना भूत से कोई जो है ना वो डॉगी आ जाएगा तो कोई कैटो आ जाएगी तो कोई भूत आ जाएगा तो कोई मुझे ना क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा, इस तरह करके बच्चे के दिमाग में जो चीज़ें डालते हैं, क्या ख्याल फरमाते हैं, कितना किरदार होता है इनका वालिदैन का?
ये तो है कि हमारे माशरे में बदकिस्मती से ये चीज़ें भी हैं कि इसी वजह से जो है ना बच्चा बाज होगा जो ना रात में उठ जाता है चीखता है खौफजदा होकर, तो ये कि नहीं सोगे तो बऊ आ जाएगा
वॉशरूम में, बंद
आ जाएगी बिल्ली आ जाएगी
जी,
तो फलाना आ जाएगा तो ये हो जाएगा यूं हो जाएगा। सर है कि अब ये है कि बच्चे को इस तरह डराना ये जायज़ भी नहीं है, और दूसरा ये कि झूठ बोलना ये अलग दो गुना हुए, एक तो बच्चे को इस तरह डराना दूसरा झूठ बोलना। तो अगर अब तक ये उमूमन जो औरतें करती हैं, अब अगर खुदा ना खासा अब तक ऐसा किया तो उसे फौरी तौबा करें, अपने बच्चों को जो है ना वो डरपोक ना बने दिलेर बने।
हाँ
ये नहीं सोते तो कोई और तदबीर की जाए, कई चीजें टाइम पे सुलाएंगे, टाइम पे सुनाए और टाइम पे उठाएं ऑटोमेटिकली बच्चा सेट हो जाएगा। अलबत्त जो बात छोटे बच्चे होते हैं ना
जी,
क्या वो जब उनको जागने का टाइम होगा लाख आप सुलाने की क्रम नहीं सोएगा, और जब सोने का उसे टाइम उसे सोना होगा तो लाख उस जगाते रहे, बिल्कुल जो छोटे होते हैं दो तीन माह के तो लाख कोशिश करें
नहीं उठेगा,
नहीं उठेगा
ऐसा ही।
ऐसे में चाहिए कि बाप को भी चाहिए ऐसे में अपनी जोजा के साथ ताउन करे कि माँ भले रात सो जाए बाप जो ना थोड़ा कभी बाप थोड़ा उसको लेके घूमे। बस ऐसा होता है कि बस बच्चे होते हैं वो शुरू में रात में सोते नहीं हैं, वो दिन में सोते हैं, तो इसमें जो ना वो माँ बाप दोनों एक दूसरे का ताउन करें बच्चे को संभालने में,
या मरहबा
हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारें।
माशाल्लाह,
मेरे बाप ये कहकर ना निकल जाए कि बस ये जो ना वो माँ का काम है तुम ही संभालो, तुम्हें जो ना अभी जागना भी है दिन में भी ये काम करना ये काम करना ये करना, नहीं खुद बाप को चाहिए ताउन करे औरत के साथ।
वाह वाह, क्या खूबसूरत और ज़िंदगी को जो है बागो बहार बनाने वाला मशवरा आपने अता फरमाया है। अल्लाह ताला आपको दराज़ खैर अता फरमाए और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से बस्ता रहते हुए अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और जो खलीफा मेल सुन्नत ने मलफूजात زندگی گزارنے کے جو اصول، جو ضابطے، جو مشورے عطا فرمائے ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اخلاق اچھے ہو، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.